मेरा सवाल उन बॉसों और गॉडफादरों से है, क्या उनके पुरुषार्थ और स्वाभिमान को गंवा रहा है यह स्थिति? बिना प्रेम के दैहिक संस्पर्श औरतों में ऐसे ही वितृष्णा जगाते हैं। मन ही मन भिनक कर वे यही सोचती जाती हैं कि चलो कर्ज की एक किस्त तो उतरी। उन्हें चुटकी भर भी आनंद नहीं आता इस पूरे कार्य व्यापार में। सुअर समझती हैं वे देह पर थूथन भिड़ाए बांस को, और एक एक क्षण गिनती जाती हैं कि कब उसकी भड़ास उतरे और वह भागे अपनी बीवी के पास। कोष्टक में उसके साथ मनाली शिमला की सैर पर। कोष्टक बंद। जान छूटे इतने दिन। सोचिए सर, अगली बार किसी असहमत बेजुबान लड़की की ओर हाथ बढ़ाने के पहले यह जरूर सोचिए कि आदमियत तो खटाई में गई ही, मर्दानगी भी गई, क्योंकि वह आपको आदमी या मर्द तो समझती ही नहीं। आप उसकी नाक पर नाक रखेंगे, उसका मन फुर्र से उड़ जाएगा चिड़ियाघर के जानवरों की तरह भी नहीं, पालतू पशुओं की ओर, जिनसे वह मन ही मन आपके चेहरे का मिलान करती हुई लगातार यही सोचेगी, जल तू जलाल तू, आई बलात् को टाल तू। दुहाई फत्ते खा महाराज की, छू थू छू। फिर घिनाए हुए मन को सांत्वना देगी, चलो कर्ज उतार रही हूं। आदमियत दिखाई है तो उसकी कीमत न लगाइए सर, उसका कद कम न करिए। किसी और की निगाह से गिरने के पहले तो अपनी निगाह से गिरना पड़ता है। अच्छी लगती है यह उठापटक, धरती का नमक है यह ठस्सेदार वृद्धाएं। पिछले हफ्ते सिंथिया कैडो हाटा की कहानी मिरेकल्स इन द स्काई एंड ऑन द रोड पढ़ी। कहानी का मुख्य किरदार है आधी अमेरिकी आधी जापानी एक शालीन वृद्धा, जिसे कोई आपत्ति नहीं है इस बात पर कि उसका पूर्व पति, जो वर्षों पहले उसे किसी और स्त्री के लिए छोड़कर चला गया था, उसकी और उसके बच्चे के साथ क्रिसमस मनाने आए। कभी अभी अभी उसके पूर्व पति की दूसरी स्त्री गुजरी है। दूसरी क्या है, मुंह पर तकिया रखकर उसने उसे मार डाला है। इस चिंता में कि उसके बाद उसकी यह दूसरी स्त्री जो बूढ़ी और बीमार है जिएगी किसके सहारे। खुद भी वो मरने की तैयारी ही कर रहा है कि क्रिसमस की शाम उसे खाली और वीरान लगती है। पुराने परिवार के साथ क्रिसमस मनाकर वह लौट रहा है। पूर्व पत्नी गाड़ी चलाकर उसे अपने किसी रिश्तेदार के घर छोड़ने जा रही है। रास्ते में पेशाब के लिए रुकता है और दूर से अपनी जीप बंद करता हुआ इतना कमजोर और परिष्कार दिखता है अपनी पूर्व पत्नी को कि उसकी तुलना में उसे अपनी जिंदगी चमत्कारपूर्ण ढंग से सुखद दिखने लगती है। होती हैं वृद्धाएं वृद्धों से ज्यादा सुखी होती हैं। मनोविज्ञान का एक पारिभाषिक शब्द है ईगो इंटेग्रिटी, हिंदी में इसे अहम तोष या आत्मगौरव कह सकते हैं। हमारा जीवन दूसरे के लिए कितना उपयोगी है, आसपास के लोगों के बीच अपनी उपयोगिता हम किस हद तक सिद्ध करते हैं, दूसरों की आंख में हमें देखकर चमक उभरती है कि नहीं, हमारे अंतर जगत की समृद्धि, हमारी जिज्ञासा और मानसिक शांति मुख्यतः इसी पर निर्भर है। एक तरह से ईगो इंटेग्रिटी का ही खेल है सारा जीवन जगत। इसी का संकेत बाबा तुलसीदास के इस परम व्यवहारिक दोहे में भी मिलता है, जिसे कबीर और रहीम के दोहे के साथ अपने जीवन के मूल सूत्रों में शामिल कर लेना चाहिए। आवत हे हरखे नहीं, नैन उमगे नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेह। भक्त कवियों की खुद को संबोधित करने की यह शैली मुझे बहुत मजेदार और अर्थपूर्ण लगती है, और कोई सुने न सुने इसलिए खुद को ही संबोधित कर लो। खुद ही अपने गाल पर चपत मार कर कह लो कि भाई ऐसा ना करना, जो ठोकर खाई सो खाई, आगे न खाना। अपने को चेताने का काम शेक्सपियर के नायक भी अपने एकालापों में बखूबी करते हैं, और इसकी एक क्लासिक अभिव्यक्ति तीसरी कसम भी है, अब लो नसानी अब न सही हो। बुढ़ापे में जीवन एकालाप ही रह जाता है, पर वृद्धाओं के लिए सरस आत्मालाप, जिसमें भगवान नामक मोहक खिलौने से इनकी कट्टी दोस्ती भी शामिल होती है। वृद्धों के लिए यह एकालाप एक किरकिरी मच्छर मार किस्म की थूकम फजीहत हो जाता है, जिसमें बीते दिनों की शेखी और नए जमाने पर कोफ्त कोंच कांच कर भरे हों। वृद्धाओं की ईगो इंटीग्रिटी भी वृद्धों से कई गुना अधिक होती है, क्योंकि उनके उपयोग हजार हैं। घर में किसी वृद्धा के होने का सीधा अर्थ है बच्चों का बेहतर लालन पालन और घर की बेहतर देखरेख। एक वृद्धा हो घर में तो छोटे मोटे कपड़े सिलाई के लिए दर्जी के यहाँ भेजने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा होता है घर में एक से एक स्वादिष्ट खाना बनाने का स्कोप, छोटी मोटी बीमारियों का मुफ्त घरेलू इलाज, जीवन के विषम मोड़ों पर व्यावहारिक सुझावों के सिलसिले। और बदले में ये चाहती क्या है? थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा भोजन। पुस्तक में बूढ़ी काकियाँ शाश्वत डाइटिंग पर रहती हैं। अब प्रेमचंद जी, पुस्तक बंद। गाय पर जो पहली कविता मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी वह शायद औरतों पर भी लागू है, उन औरतों पर भी जिन्हें सींगदार मरखंड फेमिनिस्ट कहकर जाति बहिष्कृत किया जाता है। पूरी कविता तो लंबी है, मैं सिर्फ अंत का हिस्सा उद्धृत करना चाहूँगी। मरकर देती खाल, खाल से चप्पल जूते बनते हैं, लगे न ठोकर गड़े न काटा जब हम इन्हें पहनते हैं। मैं आत्मसर की जरूरत से ज़्यादा महिमान्वित कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल न समझा जाए, पर जीने का व्यवहारिक ढंग यही है। अपनी उपादेयता बनाए रखना मस्त भाव से रूनी सूरत बनाकर नहीं, और किसी से दबे बगैर खुद अपना स्पेस रेखांकित करते हुए। यह निहायत निजी ब्रीदिंग स्पेस कई तरह से रेखांकित हो सकता है, कुछ पढ़ लिख कर, सैर पर जाकर, पेड़ के नीचे यूं ही बैठकर, मन लायक लोगों के साथ गप्पे मारकर, अगर किसी ललित कला में रुचि हो तो वह साध कर, या यूं ही संगीत सुनकर, छोटे बच्चों या भगवान नामक प्यारे खिलौने से बूल बतिया और खेल खाल कर, अपने सपनों और स्मृतियों से दो चार होकर, पुराने दोस्तों को चिट्ठियां लिखकर, घर सजाकर और सोकर। जवानी भर तो इंसान कोल्हू का बैल ही बना रहता है, वही गोल घेरा, वही तेल पेरव्वल मियाँ के दौड़ मस्जिद तक, सूर्योदय सूर्यास्त देखने जैसे सुख भी दुर्लभ ही हो जाते हैं। जीवन की शाम ही ऐसे दुर्लभ सुखों का आयोजन हो सकती है जिसके लिए ताउम्र तरसे। देह के धरातल पर जो परिवर्तन घटित होते हैं इस अवस्था में, उसका भी एक अपना ही सुख है। ऋतु चक्र से मुक्ति मिलती है, अनावश्यक मेल अटेंशन से भी। छटाकर बुढ़ापे तक वे ही दोस्त या प्रेमी साथ बने रहते हैं जिन्हें आपके भीतरी तत्व से प्यार हो, जिसे अंग्रेजी में स्किन डीप अटैचमेंट कहते हैं। छटते चले जाते हैं, देह का आकर्षण कुछ कम भी हो तो क्या, व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ जाता है, उसमें एक अलग तरह की पुख्तगी आ जाती है जिसे किसी तरह का दया भाव स्वीकार नहीं करना चाहिए। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज के उपन्यास लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा में एक पात्र पर धनी होने का आरोप लगता है, इसके जवाब में वह कहता है, नो नॉट रिच, आई एम अ पुअर मैन विद मनी, विच इट इज नॉट द सेम थिंग। पुस्तक में नहीं, धनी नहीं, ढेर सारे पैसों वाला गरीब आदमी हूँ मैं, और यह एकदम अलग तरह की बात है। पुस्तक बंद। ढलती उम्र की किसी औरत को जब युवा दिखने का कॉम्प्लीमेंट मिले तो उसे इसी तर्ज में जवाब देना चाहिए, नहीं युवा नहीं, मैं धरती सी पुरातन हूँ और यह एक अलग तरह का सुख है। मेनोपॉज से जुड़ी समस्याएं सजग सामुदायिक जीवन जीने वाली स्त्रियों, स्त्री कलाकारों, किसी उदात्त पैशन या आस्था को समर्पित स्त्रियों को नहीं होती। दैहिक सौंदर्य जीवन का केंद्रीय सत्य नहीं। आम्रपाली जब बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गई, अपने दैहिक प्रसाधनों के अनंत सिलसिलों और पुराने प्रेमियों की विकट ठकुर सुहातियों पर उसे बार बार हंसी आई। अपने पकते हुए केशों को निवेदित कई थेरी गाथाएं उसने लिखी हैं। इस प्रसंग में बार बार मुझे अपनी तरह की अकुंठ वृद्धाएं भी याद आती हैं जिनकी स्मृति में मैंने एक कविता लिखी थी, मौसियां। इसकी अंत की पंक्तियां हैं, 20वीं सदी की कूड़ा गाड़ी लेती गई खेत में कोड़कर, अपने जीवन की कुछ जरूरी चीजें जैसे मौसीपन, बुआपन, चाचीपन थी, अम्मागिरी, मग्न सारे भुवन की। ईद की सेवैयां। एक जमाना था जब ईद बकरीद याद करने वाले लोग दोस्त नहीं माने जाते थे। ईद का चांद या गुलर का फूल हो जाने वाले धुरछक मरम्मत का पात्र बनते थे, मिले नहीं कि ले धनादन दे धनादन। एक उम्मीद सी होती थी कि जो दोस्त होगा सुबह शाम हालचाल लेगा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती सुनेगा सुनाएगा, चाय की चुस्कियां भरेगा, संग हंसेगा हंसाएगा। गए लंतरानियों के दिन, चुपचाप चले गए। अब दोस्ती भी प्रेम की तरह का एक गुमनाम सा एहसास रह गई है, उसने कहा था वाले प्रेम का गुमसुम एहसास। एक अंतः सलीला शर्मीली शुभकामना पार्श्वभूमि संगी। ऐसा नहीं है कि हमें दोस्तों की सुध नहीं रहती, एक इशारे पर मैं बैठने को अब भी तैयार रहते हैं हम, पर वह लगातार की मस्त चकल्लस चांडाल चौकड़ी अभंग संवाद का वह सुख कम से कम औरतों के जीवन से तो बिल्कुल गायब। गाहे बगाहे ईद बकरीद के बहाने जिन मुसलमान दोस्तों की याद भी आती है, ज़्यादातर के पते पास नहीं। बहुत दिनों से मन था एक खुली चिट्ठी उन्हें लिखूं। 6 दिसंबर और गोधरा कांड के बाद तो खैर लगातार मुसलमान सखियों के चेहरे स्मृतियों में जगमग करते रहे। क्या जाने कौन कहाँ होगी किस हाल में होगी, एक मुट्ठी घास थे हम, मिलजुल कर खुदबुद करते थे, जाने क्या सोच कर इधर उधर फेंक दिए गए। जो जहाँ पड़ा उसने वहीं जड़ जमाई, फिर से जमा ली और भी गहरे अर्थ में। यह तो सभी जानते हैं कि मुसलमानों में मध्यवर्ग नहीं के बराबर था। बचपन में हम जिस भी मुसलमान के घर जाते थे उनके बारे में यही सुनने में आता था कि ये किसी नवाब के नाती हैं या मुगलिया खून है उनमें। एक हमारी आयशा बुआ थी जिनके यहाँ चांदी ही चांदी थी। गिलोरियों के पैसे नहीं रहते थे कई बार, पर चांदी की खूबसूरत गिलोरी दान सरौते पीकदान हुक्के संभाल कर सजाए होते थे चारों तरफ। उनकी भाषा की मैं कायल थी, इतनी खुशनुमा हिंदुस्तानी बोलती थी वे और एक ऐसे मीठे पेचोखम के साथ बोलती थी कि तबीयत हरी हो जाती थी। सबसे मज़े की बात यह थी कि उससे ज़रा भी कम जानदार उन मुसलमान औरतों की भाषा नहीं होती थी जिन्हें लगातार गुर्बत में जीना पड़ता था। मुनकिया चुड़िहारिन हो या हमारे आंगन आकर मंगौरिया तिलौड़िया पापड़ अधोरिया सपने और स्मृतियाँ पारा करने वाली रजिया ममाइन। किस्से कहानियाँ गीतों मुकरियों का अक्षय कोष थी वे। उनकी टूटी फूटी उर्दू में स्थानीय लोक भाषाओं कोष्ठक में बज्जिका भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका कोष्ठकबंद की छौंक ऐसी असरदार थी और उनका पूरा लहजा ही इतना दिलकश था कि भूखे पेट भी वे एकदम हंसती हुई जान पड़ती थी। एक बात और उनकी मुझे याद आती कि कभी कुछ मांगती नहीं थी वे, मुगलिया स्वाभिमान उनका बरकरार था। माँ खुद ही जो देती थी वे दुआएं देकर ले लेती थी और भी खांसे संकोच से। मेरी माँ उदार थी उदार है, सबसे मिलजुल कर सुख दुख बतियाती है, मुसीबत में सबके काम आती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तक इन सब गरीब औरतों और प्याले तश्तरियाँ कटोरे गिलास वगैरह माँ के आंगन में भी एकदम अलग थे। वे अलग ही धुलते पुछते थे, एक प्रश्न चिन्ह की तरह आज भी माँ की उदार गृहस्थी में वे कहीं कोना पकड़े रहते हैं। मैं माँ को चिढ़ाती हूँ कभी कभी, वह हंस कर रह जाती हैं, इतने विमर्श देखती पड़ती हैं सो इतना मानने लगी हैं। संस्कार एक बार में नहीं धुलते बेटी, जैसे कि हांडी से भी चिकनाई एक रगड़ में नहीं धुलती। उस समय इतना सूझता भी नहीं था कि बर्तन अलग रखना कहीं कोई हल्का भी दर्द जगा सकता है। बीमारियों से भी डर लगता था क्योंकि ये साफ नहीं रह पाते थे। मुसलमान नायिकाओं का एक तीसरा वर्ग था जिससे हम सब मुतासिर रहते थे, सुरैया नसीम बानो मधुबाला नरगिस मीना कुमारी वहीदा रहमान सायरा बानो से लेकर जीनत अमान शबाना आजमी वगैरह तक अपने अपने ढंग से अनूठी थी। दिलों पर राज करना मुल्कों पर राज करने से कम मुश्किल नहीं होता। जो दिलों पर राज करती हैं एक आदर्श चरित्र बनाकर जीना होता है, उन्हें तलवार की धार पर चलना होता है हरदम। साधारण लोगों का टुच्चापन माफ भी कर दे कोई, अपनी वाली रोल मॉडल की कोई टुच्ची हरकत उसके गले नहीं उतरती। फंतासिया टांगने की खूंटी हम में से हर किसी को चाहिए और वो खूंटी बन पाना इतना आसान भी नहीं। आसान नहीं उदात्तता का अभिनय भी 24 घंटे। इन सबसे अलग रोमानियत की अंगरैया के पास पड़ने वाला चौथा वर्ग है तवायफों का। हमराव जानदा और पाकिजा के भव्य सेठ इनके अभव्य जीवन का मुँह चढ़ाते जान पड़ते हैं। अपने सहपाठी मासूमा नाज की कहानी में पहले भी लिख चुकी हूँ, इनके अलावा भी कितनी मासूमाएँ फटे बुरकों से हाथ निकाल कर भीख मांगने को मजबूर इधर उधर घूमती मिलेंगी। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के पास जामिया नगर या ऐसे ही कितने गरीब मुसलमान बाजारों में ये भीख मांगती हैं तो भी इनकी आवाज़ और भाषा में शाइस्तगी होती है। ये पीछे नहीं पड़ती, सकुचाई सी थोड़ी देर पीछे चलती हैं, फिर ठगी सी खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, मानो जमकर पत्थर हो गई हों। हादसों का शिकार, तलाकशुदा, विधवा या यूं ही छोड़ी हुई औरत, गरीब और प्रायः अशिक्षित, सहमी सी इन औरतों का सहेली, जागोरी वगैरह जैसा कोई साझा सा आंगन भी नहीं गरीब मुसलमान इलाकों में, और न ही वे इतनी बाखबर हो पाई हैं कि दूर का सफ़र तय करने का शाहबानों जैसा जिगरा दिखा पाए। छठा प्रवर्ग नवशिक्षित मध्यवर्ग की मुसलमान औरतों का है, जो पर्दा नहीं करती पर शाइस्तगी की मिसाल है। अंग्रेजी फ्रेंच भी उसी सफाई से बोलती है जिस सफाई से उर्दू हिंदी। सहमत जैसी संस्थाओं, लघु पत्रिकाओं और जननाट्य मंचों में इनकी सजग उपस्थिति होती है, और यह मौलिक प्रपत्ति या विश्वास इनकी रगों में लहू की तरह दौड़ता है कि वर्ग, नस्ल, धर्म आदि कृत्रिम विभेद इक्कट दुक्कट की घेरबंदियाँ और खेल तमाशा हैं। इन सबके पास जाती है हमारी आपसदारी, जैसे कि हर दिल से हर दिल तक एक राह जाती है। एक छोटा सा प्रवर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें है सीमा मुस्तफ़ा, सीमा कासिम, नीलम इस्लाम, सिमी अख्तर, शहनाज अख्तर, शिवा फाहमी जैसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप, जो सच चुपचाप कहीं न कहीं पुल बना रही हैं, और सेवैयाँ भी, बेगम अख्तर, इस्मत आपा, कुर्तुलैन हैदर, नासिरा शर्मा, मेहरुन्निसा परवेज, जोहरा बेगम, जोया हसन और शबाना आजमी की संघर्ष कथा परवान चढ़ तो रही है। सुजाता की खीर, बिरबल की खिचड़ी। रूपकों की समझ जनमानस को खूब होती है। कहावतों के रूपक याद करें, लोक साहित्य के रूपक, मुहावरों के रूपक भी। किंवदंतियाँ खुद रूपक हैं, बादशाहों की समझ में नहीं अटती महीन बातें। तभी बेचारे बीरबल को आग के 10 हाथ ऊपर खिचड़ी की हांडी टांग कर एक विकट दृष्टांत का नाटकीय आयोजन साधना पड़ा था। कुछ लोग शर्मिंदा हुए बिना बात ही नहीं समझते, कुछ लोग शर्मिंदा होने के भी परे होते हैं। कभी कभी यह भी होता है कि समझ कर ना समझ बने रहने में फ़ायदा दिखता है, और यह फायदा जहाँ दिखे वहाँ नीत या नीति ताक पर या फिर बीरबली खिचड़ी की हंडिया में। इसलिए इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अकबर जान कर अनजान बन रहा हो, पहले ही अकबर की समझ में अट गई हो बात। बूढ़ा आदमी कह रहा है कि पूस की रात तालाब के पानी में खड़े खड़े उसने दूर जलते एक चिराग के सहारे काटी, तो यहाँ चिराग एक रूपक है। हर आदमी के जीवन में कुछ दुरस्त चिरागों का सहारा होता है। न प्रकाश, न उष्मा, दूर टिमकते तारे भी तो कुछ भौतिक नहीं देते, पर उनका होना जीवन को एक नया आयाम देता है, आत्मा को एक अनुपम विस्तार। सुजाता का बुद्ध से ऐसा ही कोई रिश्ता बना होगा। एक दलित लड़की थी सुजाता। दलित स्त्रियां साधारण पुरुषों की ऐसी सताई हुई होती हैं कि कोई असाधारण पुरुष ही उन्हें आकर्षित कर सकता है। कोई ऐसा पुरुष जिसे उनकी काया में दिलचस्पी न हो, जो पास खींचते समय जात न पूछे पर दूर धकेलते समय आपको आपकी औकात जरूर बता दे, ऐसे परम पुरुषों की पहचान उन्हें खूब होती है। बुद्ध असाधारण पुरुष तो थे ही, उन्हें तो अपनी काया में भी दिलचस्पी नहीं थी। यह बात लक्ष्य करके ही कटोरी में खीर भरी होगी सुजाता ने। इस कटोरी का बुद्ध से एक उपयोगिताकारी रिश्ता जरूर बना। उसने उनकी क्षुधाग्रस्त काया में नए प्राण फूंके, पर सुजाता का बुद्ध से कोई उपयोगितावादी रिश्ता न था। दलित स्त्रियों का तेज और उनकी वाक्पटुता हमेशा से चर्चा का विषय रही है। यदि आपने जनजीवन करीब से देखा है और आपके जीवन का एक हिस्सा गांव या कस्बों में बीता है, तो आपके लिए यह तय कर पाना मुश्किल नहीं होगा कि आपकी स्मृतियों में रस और रंग के अधिकांश सोते किसी धोबी घाट, किसी 912, किसी चमर टोली में फूटे हैं। कोई न कोई पन्नाधाय, कोई न कोई न्यूनिया, कोई न कोई धोबिन, कहारिन, नाइन, पासिन, कुंजरिन, नटी, चुड़िहारिन ही आपके लिए लोक संस्कृति की सजग दूतिका बनी है। किस्से, कहानी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, हास परिहास, टोमकच के पूरा गीत संगीत और जन्म से मृत्यु तक के नेगाचारों के बहाने सुख दुख में साथ खड़ा होने का एहसास ये ही भरती रही हैं आप। जीवन वही है जहाँ संघर्ष, और संघर्ष इनका पेट पोषना बच्चा है। पीठ पर इसे बांध कर लगातार ये ऐसे खट सकती हैं जैसे कंधे पर असबाब टांगे सिपाही। संघर्ष के कठिनतम क्षणों में भी हंस बोल सकती हैं, अगल बगल वालों को सहज सहारा भी दे सकती हैं, चूंकि इन्हें पर्दे में रहना नहीं पड़ता, राजनीतिक चेतना भी इनकी प्रबल रही है। 1857 के आंदोलन में कलावती मेहतरानी की भूमिका से कौन अनभिज्ञ है। पन्नाधाय के अलावा स्तनदायिनी दाई माएँ हम में से बहुतेरों के जीवन का बड़ा सच है। जो पाले हुए बच्चों के लिए इतना भाव रखती हैं, वे दलित माताएं खुद अपने बच्चों के लिए क्या भाव रखती होंगी, यह अनुसंधान का विषय है। नस्ल और वर्ग भी मातृमूलक संवेदनाएं प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इस बात से किसको इनकार होगा। अपने आलेख जेंडर इन द कंटेस्ट ऑफ रेस एंड जेंडर में एलिजाबेथ स्पेलमैन एक एक उदाहरण देकर बताती हैं कि कैसे श्वेत और अश्वेत, संपन्न और विपन्न माताओं की अंतश्चेतना भी बच्चों की अंतश्चेतना पर अलग अलग ढंग से प्रभाव डालती है। वैसे तो नस्लगत शोषण का इतिहास जातिगत दोहन से अलग है। नस्ल और जाति अस्मिता आंदोलन की अलग अलग कोटियां हैं, पर उपर्युक्त सूची में श्वेत और अश्वेत माताओं के साथ दलित और कम दलित माताएं भी हम आसानी से शामिल कर सकते हैं। अश्वेत विपन्न दलित माताएं अपने बच्चों को ज़्यादातर जो कहानियाँ सुनाती हैं वे दुखांत होती हैं। आने वाले दिनों में जो जिल्लत और पराभव अन्यायपूर्ण व्यवस्था के चलते या भाग्य की विडंबना से उनके हिस्से आना है, उसके लिए उन्हें तैयार करने वाली कहानियाँ समृद्ध निश्चिंत माताओं की तरह बच्चों का मनोबल मजबूत करने वाली सुखांत परिकथाएँ वे नहीं सुना पाती। लेकिन पराभव के लिए तैयार रहने का मतलब हताश बैठ जाना नहीं। पंजाबी के एक विलक्षण दलित कवि बलबीर माधोपुरी की कविता के साक्ष्य से मैं यह बात स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। माँ फुलझड़ी की तरह खिलती मुझे बताती है, तेरे जन्म के समय वह फरहाद की तरह शिवालिक की पहाड़ियों के बीच दिन रात खोदता था नहरें, ताकि हों लहरें बहरे, ताकि हरे भरे हों रेगिस्तान, खुशहाल हो सके बंजर जमीन। माँ मुझे बताती है और हंसाती है, जब तू खेलने कूदने लगा, गिर गिर दौड़ने लगा, तब दरियाओं पर पुल बना, पिच की छाती चट्टाने सीना तना, ताकि कम हो सके फासले, ताकि गुजर सके काफिले। माँ मुझे बताती है, मानो घोड़ों की काठी कसती है, जग में बेशक है बेशुमार लोग, पर कहीं कहीं ये जूझते हैं जुझारू लोग। और अब मैं बार बार माँ के कहे शब्दों पर करता हूँ गौर, और बढ़ता हूँ घोड़े की ओर। यह जात इतना बड़ा यथार्थ है, पहले मैं नहीं समझ पाती थी। छुटपन में रविन्द्रनाथ ठाकुर की काव्य नाटिका ने अंत्यज शब्द से परिचय कराया। गांधी जी के आलेखों के माध्यम से और उसके बाद महात्मा फूले के वक्तव्यों से मैंने यह पीड़ा समझने की कोशिश की कि कैसा लगता होगा अछूत होना। पर 12-13 साल की उम्र में पहला ख्याल यही कौंधा की अछूत होना तो बड़े आराम की बात है, छूने की कोशिश कोई न करे। इससे बड़े आराम की बात कम से कम एक लड़की के लिए क्या हो सकती है। बेधड़क जा सकती है वह कहीं अस्पृश्य बनकर। यह तो बाद में पता चल गया धीरे धीरे कि बिस्तर छुआछूत नहीं मानता, सिर्फ बर्तन बासन मंदिर चौबारे ही छूत मानते हैं। जो लोग दलित साहित्य पर शिल्पहीनता का आरोप लगाते हैं या फरियाद की कोई लय नहीं है कहकर उसे ग्रेस मार्क देते हैं, उन्हें इधर का दलित साहित्य ध्यान से पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम महात्मा फूले ने स्त्रियों और दलितों की आपसदारी की बात की थी। नाइयों को एकजुट किया था कि विधवाओं के केश कर्तन से वे साफ मना करें। पति का गुजर जाना कोई अपराध नहीं, संयोग है। सिर्फ इसलिए जबरदस्ती क्यों सिर मुंडा दिया जाए कि पति जीवित नहीं रहे। सिर मुंडाने के लिए सिर नवाना बेसिर पैर की परंपराओं के आगे सिर नवाने जैसा है। जन्म मरण के संयोग किसी अपमान या जबरदस्ती का बहाना नहीं हो सकते।